Chant the other mother or something else? Any suggestion? I don't know. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Vallabha Giribara Dhari Gopijana Vallabha Giribara Dhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi jana vallabha giribara dhari Gopi jana vallabha giribara dhari No, it's not happening, I don't know also how to play it. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi jana vallabha giribara dhari jaya jaya gopi jana vallabha giribara dhari jaya Jasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna,
हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा मदन मोहन राधे, निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल,
जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, स्कंद संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, श्री 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 राधा मदन मोहन जी की, श्री श्री निताय गौर सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की, ग्रंथराशि भागवत महापुराण की, निताय गौर हरि प्रेमानंदी हरि 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 वो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ चतुर्थ स्कंद 25वां अध्याय श्लोक संख्या 22। सुनासं सुदतिं बालं सुकपोलं बराननां समविन्यस्तकर्णाभ्यां बिभ्रतिं कुण्डलाश्रियं सुनासां सुदतिं बालां सुकपोलां बराननां समविन्यस्तकर्णाभ्यां ಬಿಭ್ರತಿಂ ಕುಂಡಳ ಶ್ರಿಯಂ ಸೂನಾಸಾಂ ಸುದತಿಂ ಬಾಳಾಂ ಸೂಕಪೋಳಾಂ ಬರಾನನಾಂ ಸಮವಿನ್ಯಸ್ತಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಬಿಭ್ರತಿಂ ಕುಂಡಳ ಶ್ರಿಯಂ ಶಬ್ದಾತ್ ಸುನಾಸಾಂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ನಾಕ್ ಸುದತಿಂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ದಾಂತ್ ಬಾಳಾಂ ತರುಣಿ ಸುಕಪೋಳಾಂ ಸುಂದರ ಮಸ್ತಕ್ ಬರಾನನಾಂ ಸುಂದರ ಮುಖ ಸಮಾನ ರೂಪ ಸೆ ವಿನ್ಯಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ದೋನೋ ಕಾನ್ ವಿಭ್ರತಿಂ ಚಮಚಮಾತೆ ಹುಯೆ ಕುಂಡಳ ಶ್ರಿಯಂ ಸುಂದರ ಕುಂಡಳೆ. ಅನುವಾದ ಮುಕ್ತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಜಿಕ ದ್ವಾರಾ ಅನುವಾದ. ಉಸ್ ಸ್ತ್ರೀ ಕೇ ನಾಕ್ ದಾಂತ್ ತಥಾ ಮಸ್ತಕ್ ಸಭಿ ಅತೀ ಸುಂದರ ಥೆ ಉಸ್ಕೆ ಕಾನ್ ಭಿ ಸಮಾನ ರೂಪ ಸೆ ಸುಂದರ ಥೆ ಓರ್ ಚಮಚಮಾತೆ ಕುಂಡಲೊ ಸೆ ಸುಶೋಭಿತ್ ಥೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಬುದ್ಧಿ ಕಾ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಕೀ ವಸ್ತುವೋ ಕು ಭೋಗ್ತಾ ಹೈ ಜೊ ಉಸೆ ಉಪರ್ ಸೆ ಢಕೆ ಹೇ ಜಥಾ ಗಂಧ ದೃಷ್ಟಿ ತಥಾ ಧ್ವನಿ ಸುನಾಸಾಂ ಸುಂದರ ನಾಕ್. ಶಬ್ದ ಈ ನಾಕ್ ಶಬ್ದ ಗಂಧಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆಕಿ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಸೂಚಿತ ಕರ್ತಾ ಹೇ. ಇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಾದಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಯಂತ್ರ ಮುಖ ಹೇ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಕಿಸಿ ವಸ್ತು ಕು ಚಬಾಕರ್ ತಥಾ ಜೀವ ಸೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಕರ್ಕೆ ಉಸ್ಕಾ ಸ್ವಾದ ಜಾನಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೇ. ಸು ಕಪೋಲಾಂ ಸುಂದರ ಮಸ್ತಕ್ ಉಸ್ ವಿಮಲ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಮನ್ ಕಾ ಸೂಚಕ ಹೇ ಜೋ ವಸ್ತುವೋ ಕು ಉಸಿ ರೂಪ ಮೇ ಜಾನ್ನೆ ಮೇ ಸಮರ್ಥ ಹೇ. ಬುದ್ಧಿ ದ್ವಾರಾ ಸಾರಿ ವಸ್ತುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀ ಜಾ ಸಕ್ತಿ ಹೇ. ದೋನೋ ಕಾನೋ ಮೇ ಪಹನೆ ಗಯೆ ಕುಂಡಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೀ ಹೀ ಕರಾಮತ್ ಹೇ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ಕೀ ವಿಧಿಯಾ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಢಂಗ ಸೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೇ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ज्ञानराम जन सलाह कया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितं च नमों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आपने इस पुरंजन उपाख्यान के प्रसंग में अभी तक इतने जानकार प्राप्त किए हैं कि राजा पुरंजन ने अपने सिलेक्टेड सिटी प्राप्त कर चुके हैं और इस सिटी के उद्यान में भ्रमण कर रहे हैं। उस भ्रमणरत अवस्था में उनको ये सुंदर स्त्री से भेंट हो रही है और कल तक तो सुने थे वो जो स्त्री थी वो अपने बॉडीगार्ड अपने फोर्स साथ में लेकर के आ रही थी। अब पुरंजन जी देख रहे हैं कि उनकी सुंदरता कैसा है। अब स्त्री बुद्धि है, संसार में जीव जब आता है अब अपना रहने का स्थान चुन लेता है, रह करके एक ही प्रोजेक्ट होता है उसका भोग करना, दैट्स इट। भोग उन्मुखी है ये, वाह और कुछ नहीं। मैं कल बताया था यद्यपि हमारा लक्ष्य तपस्या होना चाहिए लेकिन भूल गए तपस्या। अरे भोक्ता तो केवल कृष्ण ही है, तुम भोक्ता है ही नहीं, भोग ही नहीं सकता, लेकिन मानेगा नहीं, पागल प्रमत्त कुरुते विकर्म। तो भोगने के लिए हमारे पास तो भोग के विषय को जानने के लिए इन्फॉर्मेशन मशीन 5 है और काम करने वाला मशीन 5 है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए तो सबसे पहले जो भोग करना चाहता है उन्होंने, तो वो जो स्त्री की देखा तो उनके रूप को देखती है, उनके रूप को देखना चाहता है। तो सुंदरता, सुंदरता के प्रतीकम शास्त्र स्वर बैंग स्वर्गनाक। हम लोग सुंदरता के प्रतीक कोई हेयर स्टाइल माने, कोई और कुछ माने, लेकिन नीति शास्त्र में कहा गया सुंदरता के असली पहचान है नाक। अब किसी का आँख नहीं है, अंधे चलता है, अंध मुख बधिर हो फिर भी वो संसार चला लेते हैं गाड़ी अपना, लेकिन किसका नाक ना हो अब थोड़ा सोचिए उनको कैसे देखने लगेंगे। इसलिए भगवान ने सुपर नाका को नाक उड़ा दिए थे, वो आकर जो डिस्टर्ब कर रहा था ना, भगवान बोले यही से गए इसे कुरूप कर दूंगा कि जगत में नाक कटवा दिए, बोलते ना नाक कटवा दिया होगा मतलब रूप बिल्कुल उड़ जाएगा। कितने सुंदर मुख हो, कितने गोरे गोरे हो, अगर नाक ना हो ना तो सुंदरता खत्म हो जाए। तो भगवान ने क्या बिफिटिंग एक एक चीज दिए हैं। तो ऐसे कहा गया नासा। तो इसलिए सबसे पहले वो जो स्त्री की रूप के प्रति आकृष्ट होने का सबसे पहले सुंदरता के प्रति किसको देखते हैं, सुनासाभ्याम। अरे कितने अच्छे नाक सुंदर, इसी से डिसाइड किया जाता है कौन कितने सुंदर है, नाक से ऊपर में किन का नाक किस प्रकार है। सुनासाभ्याम तो सुंदर नाक है और नाक के ऊपर कपोलम मस्तक है मुख, और उसके ऊपर में दांत हस्ती होगी वो दांत, और करणा कुंडलम कान। ये सारे जो इंद्रियों के विषय में जानने के लिए ये शब्द रूप गंध स्पर्श इसी को जानने के लिए ये सब वर्णन किया जाता है कि इसी के द्वारा तो भोग करेगा, तो इसी को बताया जाता है। विशेष करके वहाँ सबसे पहले महाराज पुरंजन वो स्त्री की नाक दे करके वो प्रभावित हुए, उसके ऊपर उनके मुखड़ा तो देखे, सारे मुख का ही वर्णन है उसमें, जो जंत्रपाती वर्णन सारे मुख का ही वर्णन है ले दे करके, तो मुख में सबसे सुंदर वस्तु है नाक, उसी को देख करके सबसे पहले बहुत, फिर अन्य अन्य पार्ट ऑफ द फेस वो देखने जा रहे हैं। नाक एक बार कबीर जी ने जा रहे थे, संत हैं, तो रास्ते में जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां जा रही थी, उन स्त्रियों में से एक स्त्री थी जिनका अभी विवाह होने वाली थी और लगभग तय हो चुका था, और जो देखने वाले आए थे उनको और डिसाइड कर गए, तो उनको एक नोज रिंग दे गए, नथनी बोलते ना, नथनी सोने का, और उसमें और भी पत्थर जड़ा हुआ था, लख दे गए, और उसको उन्होंने अपने सहेलियों से उसी के बारे में चर्चा कर रही जा रही, पूरे रास्ता भर उसी के गुणगान करती, खास मेरे लिए लाए उन्होंने, मुझे ही दिए, अब मुझे पहले देखे थे फोटो तभी तो बोले उन्होंने यही देना है, और इतने कीमती है, इतने सुंदर है, अरे पूरा चर्चा चल रहा है, कबीर जी पीछे पीछे जा रहे थे सुन सुन के, उनके काम भले कोई काम नहीं, बस उसी का एडवर्टाइज करते जा रहे, एक नोज रिंग ने दिया उनको इतने वर्णन, तो उनको बुरा लगा, तो उन्हें थोड़ा आगे चल गए, जाकर उनको सुना सुना कर बोलने लगे, बोली यारे नथनी दिया यार ने उनके चर्चा बार बार, जो नाक दिया करतार ने उसको दिया विसार, बोला अरे तुम इतने नथनी की लेकर के इतनी चर्चा छेड़ रही है, एक किलोमीटर से उसी के बारे में, ऐसा 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 मेरे नोज रिंग में इतनी अच्छी दिखती हूँ, फोटो खींचते मेरे सब इतने बढ़िया ये है इतनी बताती जा रहे, बोले अरे ये नथनी का क्या कीमत हो अगर नाक ना होता, और नाक दिया क्या, कौन बाप ने नाक दिया तेरा, जिसने नाक दिया उनको तो भूल गया, और ये नथनी दिया उसके लिए इतनी चर्चा उनको दिया वैसा, तो हम सभी का यही दशा है, हम इस शारीरिक वेश पोशाक तथा कथित चढ़ावा सुंदरता उसी के ऊपर जो ऊपर से ढक्कन है उसी के चाक चक्के में देखकर इतने फंस जाते हैं, लेकिन सच्चाई को भूल जाते हैं कि भाई ये सब ऊपर में वस्त्र विफिटिंग जब शरीर हो तभी ना, ये ढांचा कौन दिया भाई, उनको कैसे भूल गए, इसलिए कब ओ कितना बढ़िया वॉच है, क्या घड़ी है, इतने कीमती है, उसके ऊपर में क्या क्या एनालिसिस करते हैं, अरे तेरा हाथ ही ना होता तो घड़ी कैसे बांधता, गले में टांगता क्या, ना कमर में बांधता, ऐसे दिखा करके जो करते हैं, जो अंगूठी मुद्रिका है, जो सब अपने अपना सुंदरता के परिचायक दिखाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये सुंदरता तो ऊपर से ला गया, असलियत वो कौन दिया उसके बारे में तो थोड़ा सोचो, उसके बारे में तो सोचो, यही कमी है हम लोग का, ये मूर्खता। प्रभुपाद जी के सामने उनके कुछ साइंटिस्ट डिसाइपल थे, वो कभी कभी आते हैं, प्रभुपाद जी साइंटिस्ट के सामने प्राय समय बिताते थे, और उनके हमेशा एक उनका फेवराइट वर्ड है उनको बोलते थे, साइंटिस्ट आने रास्कल, हाँ हाँ डू दे रास्कल थिंक लाइक दैट यू रास्कल, सब ऐसे ही बोलेंगे उनको। तो एक साइंटिस्ट आकर बोले, तभी जमाने में 70s में, तो बोले कि प्रभुपाद अभी पहले तो बोले कि हम हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, तभी जमाने से शुरू हुआ था हार्ट ट्रांसप्लांट, बोले डू दे रास्कल डू लाइक दैट ना, यस प्रभु जी अब तो आप तो अब ईश्वर कृष्ण को तो मानना नहीं पड़ेगा, आप तो हृदय बोलते हैं, हृदय भगवान हृदय में, हृदय से अर्जुन चित्र हृदय को तो ट्रांसप्लांट कर दो, तो दूसरा हृदय लाकर कोई बंदर का हृदय लाकर डालते हैं, किसी का हृदय डालते हैं, और फिर भगवान कहाँ जाएंगे, अब किसी के हार्ट ट्रांसफर करके दूसरे के हार्ट लाकर डाल देते हैं, जो हृदय में भगवान बढ़ते भगवान का क्या हाल होता है बताओ भाई। इस प्रकार प्रश्न उठा, प्रभुपाद ने बोले अरे रास्कल बोले उनका क्या होगा, बोले उन तो मर जाता, उनको हृदय को ट्रांसफर कर दूसरा हृदय डाल दिए, फिर क्या होता है जब परमात्मा का? बोले अरे मूर्ख, बोले तुम्हारा घर में कुर्सी है ना? है कुर्सी में बैठता हूँ ना, बैठता हूँ। बोले कुर्सी का टांग टूट गया, टांग टूट गया तो कुर्सी बदलाएगा ना, तुझे बदलाएगा? बताओ, तू कुर्सी में बैठा था, कुर्सी में कुछ कमी आ गया, मिस्टेक हो गया, तो चेंज करके दूसरा कुर्सी लगा दो, यही करेगा ना? तो कुर्सी चेंज कर दिया, आप तो चेंज नहीं हुआ ना, ना मैं क्यों चेंज होगा, मैं तो दूसरा कुर्सी लगा बैठा ना। ठीक इसी प्रकार ये कृष्ण के बैठने का जगह है हार्ट, ये उनका कुर्सी है, और कुर्सी में कमी आ गया, कुर्सी वो क्यों चेंज हो जाएंगे? वो तो वही है, उनको स्ट्राइक किया लाइक दैट, नहीं ऐसे, इतने मूर्ख अभी तक नहीं समझे, ये आजकल साइंटिस्ट बोल रहे हैं अपने को, कितना तीक्ष्ण बुद्धि था। बोले कि प्रभुपाद अभी तो वाटर मॉलिक्यूल के बारे में हम जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं ना, वाटर के ऊपर हमने विश्लेषण करके जान लिए, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के कण मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। बोले रास्केल कितने करोड़ों डॉलर खर्चा करके इसको जाना है, इतने रिसर्च करके ये करके लैबोरेटरी में ये करके प्रमाणित कर देख दिए वाटर मॉलिक्यूल इसी में इसका ही कंस्टिट्यूशन। बोले यही तो है आपका मूर्खता। बोले क्यों ऐसा कहते हैं? बोले आप अभी जान गए H2O में पानी बनता है, मुझे एक गिलास पानी चाहिए H2O ला कर दो, मुझे बनाकर पानी बना के दो, टैप से पानी ले लाना का बटल पानी नहीं, मुझे H2O है ना लैबोरेटरी में जाके मिलाओ, मिलाकर पानी दो एक बटल सा। बोले वो कैसे होता? बोले अरे मूर्ख, तुम एक बिंदु जल को विश्लेषण करके, एक अणु जल को विश्लेषण करके जान गया, वही तो आपके अधूरा ज्ञान है, लेकिन ये नहीं जाना कि इस दुनिया में कितने हजारों तालाब, कितने हजारों नदी, कितने नद, कितने सागर भरा हुए जल, इतने जल कौन साइंटिस्ट आपने कौन सा लैबोरेटरी में इतने ऑक्सीजन हाइड्रोजन ला के मिलाकर बनाया, उसके बारे में सोचता नहीं, इसी के बारे में एक अणु के बारे में करोड़ों डॉलर खर्च करके उसी को जाना, यही तो महामूर्खता है आपका। अब मुझे एक गिलास पानी चाहिए, नहीं दे सकते भाई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तेरे बाप का है क्या, कैसे लेंगे लाकर, कहाँ से पकड़ कर मिला के देगा? अरे इतने मिला हुआ है, जल ही जीवन है, तीन भाग जल से भरा हुआ है, कौन बनाया उसको? हु इज दैट साइंटिस्ट, वेयर इज दैट लैबोरेटरी? चुप, बात तो सही। बोले बट दे आर रिसर्चिंग, दे आर इतने से। बोले रास्कल रिसर्च कर रहे हैं, क्या रिसर्च कर, पैसा खराब करके जानते। जा रहे थे पार्क में, गुलाब का फूल खिल रहा था, बोले ये गुलाब का फूल देखना, ओ सो नाइस रोज। बोले एक रोज को लाओ, इस रोज को बना सकता है तो मेरे सारे साइंटिस्ट पूरे दुनिया में जितने मिल करके, सारे लेबोरेटरी का सारे सामान मिला करके, मैं आपको एक साल के टाइम देता हूँ, एक रोज ऐसा बना दो फ्रेश, ऐसे गुड स्मेल रोज। बोले से कैसे बनेगा? बोले एक रोज तो नहीं बना, एक पटाल बना सकता है। बोले कहा क्यों इतनी बड़बड़ी कर रहे, आप ये नहीं जानते इसी के एक पंखुड़ी नहीं बना सकते, ऐसे करोड़ों करोड़ों गुलाब विद इन ए नाइट, साल भर का क्या, एक ही रात में करोड़ों गुलाब खिल जाता है, कौन पेंटिंग पेंट भरता है, कभी लाल कभी पीला कभी रोजी कभी अलग अलग पेंट से, अलग अलग खुशबू में, अलग अलग एक एक पेड़ में कितने कितने गुलाब एक नाइट में करोड़ों करोड़ों खिला देते हैं, हु इज दैट पर्सन? उसके बारे में कभी जानने के लिए सोचा, कब चिंता किया? अब एक को लेकर मर रहे हैं ये रे, यही आपकी मूर्खता है, हम सोर्स को नहीं जानना चाहते, नहीं जान करके वो परम भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातमाम शांति मिच्छति, उसी को जानने मात्र से तो शांति प्राप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा, अभी अशांत मर रहा है टेंशन में, पता नहीं फॉर्मूला शांति का तुझे, वो असली भोक्ता है, उनको भोक्ता के रूप में एक्सेप्ट ही मैच भोक्ता, वही सकल भोग के अधिकारी है भोक्ता, अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोक के महान ईश्वर है, समस्त पदार्थ के एकमात्र भोक्ता है, तुम इसको भोग सप्लाई न करने, वो खुद भोगने के चक्कर में तू भोग कर ही नहीं सकता, कल हम चर्चा कर रहे थे, भोग करने के विचार करते हुए रोगी रोग का मरेगा डरेगा, तो कैसे भोग करे, कर नहीं सकता। तो यहाँ इस श्लोक में हम जीवात्मा रूपी पुरंजन ने भोग देख करके किस प्रकार फंस रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है अपने आप को भोक्ता भोगी समझ करके, भोग प्रति इतने आकर्षण हो रहा है, अपनी दुर्बुद्धि का परिचायक जिस प्रकार बड़े नाटकीय ढंग से इतने हूबहू वर्णन नारद जी ने कर रहे हैं कि कोई एक जीवात्मा जो बिल्कुल भोग करने के लिए खचाखच युवक अवस्था में किस प्रकार फंसता है, पतन होता है, बिल्कुल बिट बाय बिट स्टेप बाय स्टेप वर्णन कर नारद जी दिखाते हैं। सो एक्सपीरियंस्ड, मैं कल बताया था नारद जी खुद फंसे थे, उनको पता है कैसे फंसते हैं, तो बिल्कुल बताते हैं कैसे हमारा बंधन होता है, किस प्रकार पतन होता है। एक शास्त्र में ऐसे लिखा गया कि पांच प्रकार के प्राणी थे और कैसे उनका पतन होता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचह, पांच हत हो गए मरे। एक प्रमादी स न कथम हन्यते यो पंच भी एव पंचह। इसमें कहें कि ये जो पांच प्राणियों का नाम लिया, कौन कौन, एक कुरंग, कुरंग मतलब हिरण, हिरण को कुरंग कहते हैं, मृग डियर। कुरंग मातंग हाथी का नाम है, मातंग हाथी मातंग बोलते हैं, कुरंग मातंग, भृंग मतलब बीस भ्रमरा, कुरंग मातंग पतंग, और पतंग में छूट गया, मतलब पतंग तो ना हिंदी में क्या बोलते पतंग, बाढ़ नहीं है मौत, हाँ ये है कुरंग मातंग पतंग भ्रुंगा तो बोल दिया, अमीन मतलब मछली। ये पांच बोलिए, पांच प्रकार के प्राणी मर ही जाते हैं पांचों को, पांच कैसे मरते हैं, उनका एक एक इंद्रिय वीक पॉइंट होता है, एक इंद्रिय के प्रमाद के कारण जीवन गवा देते हैं, मर जाते हैं। बोले कैसे, बोले कुरंग जो हिरण है, कुरंग उनका वीक पॉइंट है सुनने का, उनका श्रवणेन्द्रिय थोड़ा दुर्बल है, क्यों, वो अच्छे ट्यून ने कोई गाए ना है पर्टिकुलर राग, वो तो भाग करके आएगा, अब भूल जाएगा, मुझे पकड़ कर मारेगा खाएगा, लेकिन इतने मुग्ध हो जाएगा आकर सुनेगा, राग सुनकर खींच जाता है हिरण। तो इसलिए जो शिकारी जानते हैं हिरण पकड़ने के लिए, वो पर्टिकुलर राग जाकर रिदिम बजा गया तो हिरण चुपचाप धीरे 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 उसे बाहर आ जाएगा, आकर बैठ सुनेगा, उसे पकड़ लो तब भी इतने मुग्ध चित्त हो जाता है, उसे पकड़ लेकर मर के खाता, मर जाता है, जीवन हार जाता है, केवल वीक पॉइंट एक है श्रवणेन्द्रिय, केवल श्रवणेन्द्रिय की दुर्बलता के कारण एक इंद्रिय प्रमाद किया गया, जान मर गया, अब इसी में कंट्रोल कर लेता सुनने में, अरे बोलता तो बच जाता, नहीं इसी फंस कर, कुरंग का इसे हाल होता है, एक प्रमादी हता मर गया। कुरंग मातंग, मातंग हाथी, हाथी तब देखे ना बम्बे में, हाथी होते ना नहीं, कितने बड़े होते हैं, बहुत बड़ा होता है, अपना वजन हमारा तो 60-70 किलो होता है, हाथी का वजन करने से कितना होगा, वजन तो कभी किए नहीं किसी बता चलेगा जो भी हो हमारे से तो कई गुना बड़ा है, कितने बलशाली है, क्या हाँ बड़े शरीर वाले, इतने बलशाली इतने पावरफुल हाथी मातंग, वो भी एक इंद्रिय के कमजोरी के कारण जीवन गवा देता है, मर जाता है। उनका कौन सा इंद्रिय, ओ जननेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय, उनको इसमें दुर्बलता है, तो हाथी को इतने बड़ा बलशाली हाथी को आप देखेंगे, छोटा सा आदमी उसको बट उठ कटाते हैं, बैठो बैठता है, उठो उठता है, चलो खड़ा रहो, अरे ये तो तुझे ऐसे भी पैर के नीचे चटनी बना सकता है, तो उनको ऐसे नचाता उठ उठेगा, हाथी बेचारा मूर्ख गजमूर्ख इसे बोलते महामूर्ख, फंस गया एक इंद्रियों के चल के, जीवन भर उनके बैठी खड़ता, मरता भी है मर ही जाता है। बोले कैसे, बोले उनका जननेन्द्रिय का वीकनेस है, तो इसलिए हाथी को पकड़ने के लिए आदमी हाथी पकड़ नहीं सकता, मर जाएगा हाथी के सामने, कैसे पकड़ेगा जाकर उसको। लेकिन वो क्या चाल करते हैं जंगल में जिसमें हाथी रहते हैं, जा करके जंगल के बाहर कई जगह में एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं, 7-8 फीट का गड्ढा खोद करके उसके ऊपर पता पता डाल देते हैं। और जो सी एलिफेंट होता है, स्त्री हाथी होता है, उनके आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, या पहले ज़माने में टेप था नहीं तो वो कोई इमिटेट करता था, कोई आदमी एक्सपर्ट जो होते ना उनके सी एलिफेंट आवाज़ को बिल्कुल हूबहू करके आवाज़ करेंगे आकर, तो हाथी सुनेगा। अब स्त्री हाथी का आवाज़ सुन करके भाग करके पहाड़ जंगल से 10 किलोमीटर दूर से सुन लेगा, वो आएगा दौड़ करके, दौड़ते विशाल शरीर वाले हाथी आएगा, अब आ करके उन्हें छिप करके बैठ जाएंगे, वो बड्डा गड्ढा खुद हो गड्ढा के अंदर आएगा, वो तो भूल जाएगा गड्ढा फटा, तो इतनी पागल हो जाएगा गड्ढा में दुम गिर जाएगा। 8 फीट का गड्ढा है, 8-10 फीट का, उसमें गिर जाएगा हाथी की, जानते हैं सब कुछ बहा शक्तिशाली लेकिन गड्ढा से उठ नहीं सकता, आपने आप कितने प्रयास करे इतनी वजनदार है उठ नहीं सकता, हाँ उठ नहीं सकता, अब चार तो उसके पैर है, हाथ तो है ही नहीं, अब पैर उठाए कैसे उठा के, तो इतना हाई हैवी वेट है उठ नहीं सकता, कितने सूंड पूछ पैर कुछ चाल चलाए बरसों तक प्रयास करे उठ नहीं सकता, गड्ढा से उठ नहीं सकता, तो उनको छोड़ देगा वो शिकार ने जो पकड़ने वाले, 1 महीना तक छोड़ दें, खाना पीना नहीं देगा, बेचारा चिल्ला करके रो करके इतनी परेशानी होकर बिकल होकर कैसे उठ पाएगा, 1 महीना तक खाना पीना नहीं देगा, बिल्कुल सूख करके ऐसे हो जाए तब जाएगा उसको जाकर खाना देगा, बोला अरे मर रहा था खिलाया मालिक, तब फिर उस उक्रेन से या कोई लकड़ी फकड़ी डालेंगे तो उठ कर आएगा, उठ कर जीवन भर उसका बैठी घटेगा, उसके लिए मरेगा, दो पूरा काम करेगा वो सुड़ेगा सखा डाल फल कुछ डाल देगा उसी को खा कर रहेगा। इतने बलशाली हाथी एक इंद्रिय के कमजोरी के चलते जीवन गंवाता है, कुरंग मातंग पतंग पतंगा, आप सब जानते ना बारिश के समय में अब बल जला दो लाइट जला दो उसको कीड़े बोलते हैं, वो क्या करेंगे कहाँ से अपना पेड़ में पौधे में कब बैठेंगे, भाग करके आएंगे, लाइट देखने से तो मरे कि उनका एक इंद्रिय जो दृष्टि है उसमें कमजोरी है, उज्जवल वस्तु देखने से संभाल नहीं पाएंगे, भाग कर आएंगे दौड़ करके पकड़ने के लिए, अब लाइट के पास दौड़ करके पूरे बेग से आएंगे, लाइट के टच कर चर फस फट खत्म स्वाहा, आस होकर गिर जाएंगे, ये बल्ब लगाते ना बल्ब के पास आएंगे, बल्ब के बाहर से ही मरते गिरते हैं, सुबह सुबह देखें कितने मरे पड़े होंगे सैकड़ों हजारों संख्या में, वो देखते हैं मेरे सामने ये शेर मेरे भाई बंधु कुटुंब सब मरे हैं और फिर भी मरते हैं, क्योंकि इतने उनका इंद्रिय एक ही इंद्रिय कमजोरी है देखने का, अरे कितने अच्छा है मैं जाऊं उसको पकड़ो मर हो जाए, केवल रूप के देखने के मारे में कंट्रोल नहीं कर पाए, एक इंद्रिय प्रमाद कर गया दुर्बल हो गया, इसके कारण जीवन गवाए, और एक नहीं हजारों संख्या में कीड़े मर जाते हैं एक लाइट के चक्कर में, कितने हजार मर जाते हैं बेचारे खत्म जल कर आकर फिर भी संभाल नहीं सकते अपने आप को, एक इंद्रिय उनके कमजोरी है इसी कारण, कुरंग मातंग भृंग, कुरंग मातंग पतंग, ये तीन प्राणी का तीन इंद्रिय, कुरंग मातंग पतंग भृंग, भृंग मतलब भौंरा, भ्रमर का एक इंद्रिय कमी है कौन सा जानते ना, नाक, ये है गंध, उनका नाक गंध लेना में इतने उन्मत्त हो जाता है, इतने पसंद है उसको, भौंरा घूम घूम करके फूल फूल से सब जाकर गंध सुनेता है, और पद्म पुष्प का गंध मिल गया तब भौंरा तो बुलाओ हो मेरा जीवन पूर्ण सफल हो गया, तो जाता है कमल फूल जब दिन में खिलता है ना, खिल जाता जाकर उसी के ऊपर बैठता है, जाता ही नहीं उसको छोड़ करके, पद्म केसर को छोड़ करके पूरा दिन भर नहीं जाता, 12 घंटे तक बैठा रहता है, इतने आकृष्ट होता है गंध के कारण बैठा रहता है, और जब शाम होता है अब जानते ना सूर्य बंधु पद्म है कमल बुझ जाता है बंद हो जाता है, शाम होने बंद हो तब भी नहीं जाता, उसके सामने देखता है पंखुड़ी ऐसे आते क्लोज हो रहा है, लेकिन गंध के मारे इतनी दुर्बलता है, ये जो नासिका का जो इंद्रिय इतनी कमजोरी है, چھوڑ کر نہیں جاتا، ان کے سامنے بند ہو جاتا، بولا چلو ان کے ساتھ رہوں گا، اب بند ہو جاتا ہے اور باہر جانے کے لیے راستہ نہیں، اسی کے اندر گھوم رہے، اسی کے اندر مرتا ہے، مری جاتا ہے اس کے اندر میں، کیول ایک اندریہ کے پرماد کے کارن، ایک اندریہ کا دربلتا کمزوری کے کارن اس کا بھی موت کا گھاٹ ہوتا ہے۔ کرنگ ماتنگ پتنگ بھرنگ، اور پانچواں آنے والا ہے مین، مچھلی۔ مچھلی آپ لوگ تو یہاں مچھلی پکڑنے کے بارے میں جانتے ہوں کہ نہیں، جو کوسٹل سائڈ کے ہوں گے ان کو پتا ہے، مچھلی پکڑنے کا کئی پرکار کے سرانجام ہوتا ہے، کئی پرکار کے ہوتا ہے اپائے۔ ایک ہوتا ہے بنسی، ایک فشنگ راڈ، جانے پڑے ہوں گے ٹی وی وغیرہ میں دیکھے ہوں گے شاید، پریکٹیکل دیکھیں، ایک راڈ ہوتا ہے تو اس میں رسی باندھتے ہیں، تو اس میں ایک کانٹا ہوتا ہے اسپیشل کانٹا، وہ ون وے راؤنڈ کانٹا ہے، جائے گا تو لیکن نکل نہیں سکتا، اس میں اسے لگایا ہوا ہے، تو اس میں تھوڑا کچھ مچھلی کے لیے کھانے کے وستو لگا دیتا ہے، وہ جو مچھلی پکڑنے والا لگا کر کے ڈال دیتا ہے۔ اب مچھلی کا جلچر پرانی ہے، لیکن ایک ان کا دربلتا ہے، ان کا جیوا سواد کے، سواد اندریہ اتنے کمزوری ہے، وہ دیکھتا ہے ارے میرے کھانے کی چیز یہاں ہے، ارے گدھا یہاں کیسے آ گیا، سننے میں کیسے طرح کھانے کی چیز ہے، تھوڑا سوچو تو صحیح، نہیں سوچے گا، نہیں سوچے گا، اب پاگل ہو کر کے آئے گا اور دیکھ کر کے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں، میں ہی کھا جاؤں گا، آ کر کے کھپ کر کے اس کو منہ میں لے لیتا ہے، ارے لے کر کے ایک بار ان پٹ کرتا ہے پٹافٹ، سیدھا اندر لے لیتا ہے، اندر لے کر کے بھاگ جاؤں کہاں بھاگ کر جائے گا، وہ تو رسی سے بندھا ہوا ہے کانٹا، اب تو کھینچا پورا کلیجہ اکھاڑ کر کے لائے گا، کلیجہ اکھاڑ لائے گا، چھٹ 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 پانی کے اندر ہو کر کے وشال مین مچھلی کیول اس چھوٹا سا جیوہا کے دربلتا کے کارن، اسی کے کمزوری کے کارن کتنے بری حالت میں تڑپتے تڑپتے مارا جائے گا، مرے گا، کیول ایک ہی کوئی نہیں پکڑ سکتا، پانی میں راجا ترا کھیلتا تھا بنداس، لیکن ایک کمزوری سوادندریا ان کا کمی ہوا، دربل ہوا، یہ دربلتا کے کارن وہ اپنی جان گوایا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی پانچ پرانی، یہ کرنگ ماتنگ پتنگ بھرنگ مینا، یہ ہتا پنچہ، یہ پانچ ہی مری جاتے ہیں، ایک پرمادی، ایک اندریا ان کا پرماد کیا تو وہ مری ڈالے، مر گئے۔ تو آگے بولتے ہیں کتھم ناس ہنیتے یو پنچ بھی یو پنچہ، تو کہتے ہیں کہ بھیا ان پانچ پرانیوں کا تو ایک ایک اندریا پرماد کیا دربلتا رہا، ایک ایک اندریا کی دربلتا کے کارن وہ جان گوائے، اور ہم، ہمارا تو پانچوں کو پانچوں اندریا پرمادی ہے بھائی، کوئی کمی نہیں ہے، سب اپنا اپنا پوائنٹ پر ہے۔ نارد جی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جیسے کوئی پرش کے پانچ پتنی ہو اور سب پکڑ کر کھینچے چلو، ٹھیک اسی پرکار وہ پانچ اندریاں، آنکھ چاہتا ہے بڑے سندر روپ دیکھنا، سبھی کا حال یہی ہے، کان چاہتا ہے کہ بڑے سندر ٹون سننا، جیوا تو ہے ہی ہے جو چاہتا ہے کھانا، اور ناسک کا گندھ چاہتا ہے، اور اسپرش بڑے ملائم اسپرش چاہتا ہے، تو یہ ہمارا پانچوں کو پانچ اندریاں پرمادی ہے، تو کیسے ہم بچ سکتے ہیں، کتھم نہ سہنیتے، ان کا حد کیسے نہیں ہوگا جن کا پانچوں کا پانچ پرماد ہے، پرمادی ہے، ہمارا یہی دشا ہے، ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے اس میں سے، پانچ اندریا جس کا پرماد کرتا ہے۔ تو اس لیے اس سب کو جان کر کے اسی بدھی سے یہ کام لینا چاہیے کہ اس پرکار سنسار سے آپ کو پھنسانے کے لیے انیک آیوجن کیا گیا ہے، بھگوان کی مایا اتنے شکتیشالی ہے، بھگوان سوئیں کہتے ہیں دیبی ایسا گنمئی مم مایا درتیا، اے میرا مایا کوئی تھرڈ کلاس نہیں ہے، یہ بھی دیوی مایا ہے، سمجھ لو، کیوں میری مایا ہے، مم مایا، یہ تیری باپ کا نہیں ہے، یہ میری ہے، مم مایا، इसलिए मेरे पावर से मेरे माया के कारण दुरत्तया, कोई माइकलेल है ही नहीं कि उसको पार पाले, कोई अब तक हुआ नहीं। अरे बड़े से बड़े हजारों हजारों साल इंद्रिय को निग्रह करके, अरे सम दम शौच तप को खूब याजन तपस्या करके अभ्यास करते हुए भी अब क्या बताएं। आप लोग जाने होंगे विश्वामित्र ऋषि 60,000 साल तक कड़क तप जंगल में किए, कठिन तप किए। इंद्र को लगा ये मेरे पुष्प इस चक्र में तो नहीं, मेनका को भेजे। मेनका अप्सराने गई, अब तभी जमाने तो इतना हाईटेक था नहीं, तो ऐसा तो कुछ नहीं किया होगा, लेकिन वो गई जाकर के केवल उस जंगल के अंदर, वो देखे नहीं थे, आंख बंद करके जप कर रहे थे, आंख बंद था लेकिन कान तो खुला है, बंद नहीं होगा। वो अपने चलने लगी, बाजू में चल करके गई, उनका जो अंकल बेल्ट था, अंकल बेल्ट क्या बोलेंगे, पायल, पायल, वो पायल की जो झनझन झंकार, पायल के झंकार से विश्वामित्र जी के पतन हो गया। 60,000 साल के तब पानी में गया। हाँ, एक और इंस्टांट साउंड सुनते, महाभारत में एक ऋषि थे वृंदावन में जिनका नाम था सोवरी मुनि। वो तो बोले ये स्टेट में डिस्टर्ब हो रहा है, जंगल में भी ये पशु डिस्टर्ब कर रहे हैं, यहाँ गाड़ी मटर है, मैं कहीं उनको बोला मैं सिलेक्टेड मैं पानी के अंदर जप करूँगा जा। इतने गहरा जमुना जी के जल में जा करके, जमुना जी के अति गहरा जल में जा करके अपना वो जोगी थे, जोग शक्ति के कारण पानी के अंदर वो बैठ गए, उनको जलचर प्राणी की तरह भी वो रह सके, ऑक्सीजन उनको मिल गया पानी के अंदर, वो यहाँ बैठे। वो कोई डिस्टर्ब, पानी के अंदर कौन जाए भाई, कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, बोले कोई डिस्टर्बेंस नहीं, यहाँ बैठ के भजन किया। अरे एकांत गंभीर जल के अंदर सुभर जी ने अपने आप योगासन करके वहीं भजन करने लगे। लेकिन माया तो माया ही है, तुम कहाँ जाएंगे। यहाँ मछली थे, मछली के गोष्ठी आकर एक दूसरे से मिलने लगे। अब देखिए इतने बड़े त्यागी बैरागी जो पानी के अंदर जाके भजन कर रहे हैं, एक पुरुष मछली एक स्त्री मछली के मिलन को देख करके उनके काम का उद्रेक हो गया मन में। उसके कारण भी बताते हैं, बोले कि वो भजन कर रहे थे तो मछली लोग आते थे जलचर प्राणी, तो मछली आके देखते हैं ये बाबा जी तो अच्छा है, वो हमारी तरह है, हमारे तरह का डिजाइन नहीं है, हमारा डिजाइन उनका डिजाइन है, लेकिन हमारे तरह है, हमारे गांव के रहने वाला लगता है, वो नया आया है, ग्रीन कार्ड बना लगा यहाँ, तो इसी समझ से मछली अपना समझ रहे थे। तो एक दिन गरुड़ जी ने जमुना जी के हृदय के पास तो जाकर बैठे थे, गरुड़ जी का तो अपना भोजन था, अपना भोजन है, भले भगवान के वाहन है, सीनियर डिवोटी है, लेकिन वो चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल शायद पालन नहीं करते होंगे, क्योंकि उनका भोजन तो कर दूंगा मछली तो खाते हैं बगड़ करके, तो लेकिन फिर भी वेरी सीनियर डिवोटी। तो गरुड़ जी ने देखे एक बड़ा मछली जब आ रहा था, अपने पार्टी के साथ कोई फेस्टिवल था मछलियों का, वो घूम रहा था, जो उनका सरदार मछली था वो मेन मछली था, तो गरुड़ जी का नज़र पड़ा, खपाक पकड़े और सीधा इनपुट कर दी, सीधा निकल गए, जैसे आप गरम गरम छोटा सा साइज गुलाब जामुन मिले और कोई शायर मांगे कुछ करे, सीधा इनपुट, कोई देखने नहीं देंगे, टपाक करके ले लिए। तो सारे मछली बोले हमारा नेता हमारे सरदार के ये महंत ये वो तो गया, गरुड़ जी सीधा लेकर के चुहा करके खा गए उसको देख कर, पेड़ में सारे मछली देख करके इतने हताश डर गए, हाहाकार मच गया, रोते चिल्लाते भागते आकर बोले वो क्या कहें, समाज तो लूट लेंगे, तो किसी को भी खा जाओ, इनको ले लिए, हम तो क्या करें। आकर के सुवरी मुनि के पास रोए धोए सब, वो तो इतने दिन रह गए तो मछलियों के भाषा भी भाव भी समझ रहे थे, उनके लैंग्वेज समझ रहे थे, तो आकर खूब बोले, बोले बाबा जी देखिए आप तो हमारे पड़ोसी हैं, यहीं रहते हैं, यहाँ का भी यहाँ का क्या बोलते हैं उसको आई कार्ड यहीं के बनाएंगे अपने, तो अब देखिए इसे इसे आकर गरुड़ जी खा गए, आप ही हमारे सहारा है, कुछ कीजिए हेल्प कीजिए, ऐसे प्रार्थना किए। बोले मैं बोले भजन कर रहा हूँ, मैं अंदर कृपालु हैं, दया करना चाहिए परोपकार। बोले अच्छा कोई चिंता मत करो, कौन खाना है ये देखो पक्षी आकर पक्षीराज खा। तो सवरे मुनि उठ कर गरुड़ जी को देखे, गुस्से में देख करके डांटे, बोले देखो गरुड़ जी ये मेरे भजन के एरिया है, मेरा इलाका है, मैं उनके यहाँ रहता हूँ, पानी के अंदर मछलियों के साथ रहता हूँ। आप इन बिचारे आपके तो कोई गड़बड़ नहीं किए थे, बिना कारण से आप आकर पकड़ के उसे मार के खा गए, दिस इज नॉट गुड, ये ठीक नहीं, ऐसे आप किए। ये बिचारे कितने दुखी होते मेरे पास आकर रोते हैं। गरुड़ जी बोले, सोबरी जी आपको पता है भाई मेरा ही भोजन है, अब सामने लंच पैकेट आया मैं कैसे छोड़ दूँ, भूखा तो था, लंच सामने है मैं कैसे छोड़ दूँ, नरे आप और कोई कहा, और कोई कहाँ ढूंढू, मेरे सामने आया तो खा लिया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये मेरा एरिया है, मेरे साथ मैं उनका साथ रहता हूँ, मेरे उनका साथ है, हमारा संपर्क है, आप खबरदार आप नहीं मानते इसे बात नहीं चलेगा। अगर फिर कभी मछलियों को दिखा कर आपने पावर दिखा रहे थे, अगर फिर कभी यहाँ आकर के एक भी मछली पकड़े तो मैं साफ देता हूँ आपकी छाती फट जाएगी। करोड़ जी उनको देखे, सोचे बोले ये कितनी जूनियर है मेरे से, मेरे सामने उनका जन्म ही नहीं हुआ था, काल का डिबूटी अभी साधन प्रैक्टिस कर रहा है, अभी ट्रेनिंग ले रहा है, अब मेरे ऊपर इतने दान है, इतने अहंकार है उसका। लेकिन गरुड़ जी चाहते तो इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट करते, उनको अभिशाप देकर उनका खटिया खड़ी कर देते, लेकिन गरुड़ जी प्रगत भक्त थे, जो सीनियर डिवोटी होते हैं उच्च कोटि के, वो इस प्रकार के अहंकार अभिमान छोटे नालायक भक्तों को देख करके वो मानते नहीं, बोले चलो नादान है खुद ही समझ जाएगा, मैं क्या उसके साथ झगड़ा करूँ, मेरे लायक है ही नहीं हूँ। तो बोले ठीक है सुवरी जी जाइए, थैंक यू, मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि वो एक्शन में नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है आप रहो मैं नहीं आऊँगा। गरुड़ जी चले गए, बोले थैंक यू, आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे, मैं और कोई खा लूँगा, नहीं आऊँगा, ठीक नहीं आऊँगा। गरुड़ जी चले गए, लेकिन गरुड़ जी के चरण में अपराध तो हो ही गया मुनि जी के। आप उनका हजारों साल के इतने सेक्लूडेड प्लेस में गहवीर पानी जल के अंदर बैठ के भजन का सारे फल पानी के पानी में चला गया। अब हुआ ऐसा कि वही मछलियों के मछली के संगम देख करके इतने काम के उद्दीपन हुआ कि आपको संभाल नहीं पाए, मछली की तो शादी कर ही नहीं सकते। अब इतने उद्दीपन हुआ, उनके अंदर उत्तेजना हुआ कि पानी से उठे, ऊपर उठ करके मथुरा डिस्ट्रिक्ट में चले गए। मथुरा के राजा मांधाता थे और उनके 50 कन्याएं थे, और जाकर के बोले मुझे शादी करना है। मांधाता बोले भैया आप तो गांव घर बार छोड़कर पानी के अंदर तप कर रहे थे, ये क्या हो गया, गिल्ले कपड़ा पहनकर सीधा भागा है, शादी करना है? अरे आपका कोई घर ना, घाटी फ्लाट क्वार्टर कुछ भी नहीं है, कोई जॉब नहीं है उनका, कोई क्या है, और रूप वो कई दिन से सेविंग टेविंग नहीं किए, कुछ नहीं किए, हाल है कैसे शादी करें। लेकिन वो मांधाता जी जानते हैं भाई ये तो क्रोधी जोगी है, कुछ भी मुझे अभिशाप ना दे दे, गरुड़ जोग दे दे मुझे अभिशाप दे दे। तो डर के मारे, महाराजा बड़े चतुर थे, मांधाता जी बोले देखिए जी सुबर जी आप चाहते हैं, मैं क्यों मना करूँगा, मैं तो चाहता हूँ, मेरे पास तो 50 बेटियाँ हैं, आप शादी करना, लेकिन मैं क्या करूँ, बेटी तो सब बड़े हो गए, आज छोटे तो है नहीं, सब समझ रहे हैं बड़े हो गए, अगर अब मैं उनको बाध्य क्या करूं, और उनमें से कौन शादी करे ना करे, मेरा मत में तो यही है कि आप चले जाइए अंतपुरी में, जो आपको सिलेक्ट करेगा, मेरे तो ओके, मेरे तरफ से एनओसी एडवांस एनओसी सर्टिफाई कर दिया, बोले आप जाओ जो आपको शादी करे करे, मैं क्या करूं। सोबरी मुनि समझ गए कि राज आके चतुर आई, भले मेरे ये कुरूप को देख करके कौन पसंद करेगा, कोई शादी करेंगे नहीं, सब मुंह मुड़े के कबाड़ बंद कर देंगे, देखे खिड़की बंद कर देखेंगे नहीं कोई। बोले राजा बड़ा चतुरा है, शादी देना नहीं चाहता अपने बेटी को, इसे बंद कर दे। बोले मैं भी समझ रहा हूँ उनके बात में भी, वो तो जोगी थे समझ गए बात। अब चले गए बाहर जाकर के, आपने योग सिद्धि से, योगी की शक्ति से आपने रूप को इतने बदल डाले, इतने सुंदर बना डाले, इतने सुंदर शरीर और सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके आए, पहन करके राजा तो परमिशन पहले दे दिया था, एनओसी पहले दिया था, अब रानियों महल में चले गए। अरे 50 को 50 राजकुमारी पीछे पड़ गए, बोले हम ही शादी करना है, ऐसे पीछे पड़े कि राजा को तो उसी दिन 50 शादी थोक में करना पड़ा, होलसेल में बैठा करके। बोले और क्या करें भाई, ये एक दिन दो दिन में ना, डोंट मेक लेट, हाजी हमारे एक साथ में 50 शादी की, बताओ ये महावैरागी पानी के अंदर छिपे थे, ये हाल उनके क्या ये भक्त अपराध यही से खतरनाक है। इतने नहीं बुझा, केवल इतने में नहीं हुआ, सारे तो पानी में गया, 50 आदि के पानी से पूरा आठ करके उठ करके, और उनके साथ मेंटेन करना। और जो गृहस्थ हैं आप लोग में ऐसे पता होगा, अब एक पत्नी मेंटेन करने में कितने ये लगता है, और 50 हो जाएं और सब सिमिलर पोस्ट पोजीशन वाले हों तो उनको उनके साथ रहे, लेकिन जो कि शक्ति था सारे ऐश्वर्य ला करके उनके साथ मेंटेन कर, लेकिन अंततः कितने भी अमाप ऐश्वर्य हो बुरी तरह से दुखी होने लगे। उनको याद आया, अरे मैं कहाँ था, घर परिवार गांव छोड़ करके पानी के अंदर जाके भजन किया था, मेरा क्या दशा हुआ इन मछलियों के चक्कर में, उन्हीं के ऊपर दया किया, उनको फेवर करके मेरे ये हाल हो गया यार। दुखी होकर के बोले ये फंस गया, मैंने जा करके जंगल में तप करने चले गए। लेकिन उन जीसी के ऊपर, जिन मछलियों के ऊपर उनने कृपा किए थे, जिनको बचाने के लिए गरुड़ जी को साप दे दिए थे, तो उनका तो ये हालत हुआ, बुरी तरह से फंसे। अब ये मछलियों का क्या हुआ उनको भी बताते हैं, वो भी साप के भागीदार बने, गरुड़ जी के अपराध के भागीदार बने। तो उन मछलियों को वो तो छोड़ के चले आए, वहाँ वहाँ गरुड़ जी जा करके वो दमनक द्वीप में वो सांप खा रहे थे, तो एक सांप बड़ा गुंडा था, वो टेररिस्ट था, वो टेररिस्ट कालिया उनका नाम था, वो अपना गैंग बनाकर बोला हम नहीं मानते, मीटिंग हुआ था भाई आप सब जाओ इतने हिसाब से, जब गरुड़ जी आते हैं इस जगह पर बैठ जाओ, अपना खा पकड़ जाएँ, डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, एग्रीमेंट साइन हुआ था। लेकिन वो बदमाश एग्रीमेंट माना नहीं, वो तो टेररिस्ट था, आपने गैंग लेकर के हम नहीं मानते, हम लड़ेंगे देख लेंगे गरुड़ जी क्या करेगा, हम इसे था ही बलशाली। और जिस दिन उनका टर्न आया वो तो बोला हम नहीं जाएंगे, पूरा अपने गैंग लेकर के गया, हम हमला करेंगे गरुड़ जी के ऊपर। जरे बड़े बूढ़े बोले अरे मर जाएगा गरुड़ जी के सामना, तू कैसे कर पाए, हम है ताकत वाला, तो आपने सारे सशस्त्र वाहिनी लेकर के गरुड़ जी को सामने करने के लिए बैठा। गरुड़ जी देखे आज क्या हो गया, मेरे भोजन मंडप पर कोई है ही नहीं, बोले इतने परिमाण में साफ होना चाहिए था, इतने बाकी के एक आदि जैसे भोजन आइटम और होना चाहिए था, आज कुछ नहीं, क्या हो गया, कोई एग्रीमेंट को मान्य किए क्या, क्या है। वो आकर जब किसी को फोन कर पूछे होंगे, बोले ये व्हाट इज दिस, मेरे खाली पड़ा है प्लेट, तो पुराने जो सीनियर सब थे बोले बोले गरुड़ जी इसे हम गुस्सा मत कीजिए, ये बदमाश एक टेररिस्ट है, हमारा बात मानता ही नहीं, ऐसे गुंडागर्दी करता है अपना गैंग करके, अब आपके साथ लड़ाई करके बैठा चक करके, बोलता हम नहीं करेंगे सब खाएंगे, हम देंगे नहीं अपना, अच्छा एक सांप, ना अरे सांप नहीं, इतने दुर्दांत इतने खतरनाक बलशाली है, और इतने उदंड मचता है, आपको लड़ाई करने के लिए चक्कर बैठा है अभी तो, ना अच्छा तल में आता हूँ देखता हूँ। तो गरुड़ जी उतरे, गरुड़ जी से लैंडिंग किए दमनदीप पर, कालिया अपने सौकड़ों फना था, सौ फोने के साथ गर्जना करके उठा उनका अटैक करने के लिए। गरुड़ जी देख कर हंसे बोले अरे मेरे सामने सांप जैसे कोई बहुत बलशाली बिल्ली हो, वो इनके सामने कि चूहिया, चूहिया अंदर छोटा चूहे के बेटा, ओ देखाएगा मैं मार के दिखाऊं, तो क्या समझ रहा है मुझे, आपने पूरे पावर लेकर के चला जाएगा, तो बिल्ली हंसेगा ना, शर्म करेगा ना, गुस्सा दिखाएगा, क्या करेगा बताओ बोलेगा उसके सामने में ही उनका तान तोड़ मेरे सामने तू दिखा रहा है तू मेरे सामने है क्या, किस माने का है। तो गरुड़ जी ऐसे समझे बोले तू इतने पूरा गैंग लाकर मेरे सामने दिखा रहा है, तू नहीं जानता तू मेरे सामने, अरे तू मेरे ब्रेकफास्ट के आइटम है, तू मेरे सामने इतने तान तोड़ दिखा रहा है, तू लंच के लायक भी नहीं है मेरा। लेकिन वो तो गर्जना तर्जना कर रहा था, हूँ हाँ कर। अब गरुड़ जी बोले अच्छा तू बहुत हिम्मत कर रहा है, अब मैं आ रहा हूँ तेरे पास। आए गरुड़ जी आ करके उनके दो ही तो पंजा था, एक पंजा से केवल ऐसे स्लाइडली बाएं हाथ से ऐसे ही थोड़ा कर दिए, एक पंजा का थोड़ा टच कर दिए, इतने आघात लगा गरुड़ जी को, उनका तो 14 पुरुष याद आ गया। आपने साथियों के साथ में भागा, इतने व्याघ्र लेकर के पीछे मोड़ करके भागा, नॉन स्टॉप देखा ही नहीं पीछे, हाई स्पीड में भागा, सारे सप्त समुद्र लंघ करके, और पता नहीं गूगल में सर्च किया कहाँ गरुड़ प्रूफ प्लेस है। ये तुम्हारे गरुड़ जी पीछे बोले तू जाएगा कहाँ, मैं जा रहा हूँ, किन से समुद्र तुझे बचाएगा, एक झांपड़ से तेरा तो टट्टी पिशाब होकर भाग रहा है। और तुरंत अपने लैपटॉप खोल करके सर्च मारा गूगल में, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ गरुड़ प्रूफ है, गरुड़ मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। अब देखा कि एक सोवरी ने साफ दिए हैं, ये जमुना जी के एक हद है, वहाँ गरुड़ नहीं जाते, उनको साफ मिला। ये तो जलपथ में, स्थलपथ में, स्काई में, तीनों में इतने तेजी से भागा सपरिवार, दौड़ कर आकर के सीधा उस हृदय में जाकर के समझ लिया, सांस लिया, बोला अरे मरी जाता आज तो, ये इतने खतरनाक है, इतने शक्तिशाली, बाएं हाथ में एक झापड़ मारे मेरा तो शरीर हिल गया, अरे बाप रे बाप, बोला जीवन जब तक रहूंगा तब तक याद रहेगा ये झापड़। वो झापड़ भी नहीं था खाली, टच मात्र, इसी के थे यही सही। अब गरुड़ जी के शक्ति का एहसास हो गया उनको, और डर के मारे बोला मर जाऊंगा, यहीं तक रहूंगा और नहीं जाऊंगा कहीं, भले ही मेरे कम पड़ता है, छोटा क्वार्टर है यहाँ, मैं समुद्र में रहने वाला है कि कल एक हृदय में रहूँगा, हृदय में लेकिन मेंटेन करके अपना बड़ा बना करके घर, वहीं रहा हल बना करके, अपने सारे पत्नियाँ सब वहीं रहने लगे। और जब काली आ गया, इतने विषैला सांप था, इतने पॉइजनस स्नेक था, जैसे वो हृदय में आ गया, जितने मछली थे समुदाय, उसी दिन उसी क्षण ही सांप मर करके रहा, कि काली एक विष, इतने तेज विष के प्रभाव था, भागवत में वर्णन करते हैं वो तो पानी में रहता था, उनके विष के प्रभाव से आकाश में कोई चिड़िया उड़ करके जाते थे वही गिर के मर जाते थे, आकाश में चिड़िया गिरते मर जाते थे, कोई पीने वाले पानी आया मुंह लगाया वो जल के भस्म होते मर जाता था, वो पास में कोई पेड़ पौधा कुछ भी नहीं था, सब सूख करके जल गए, ठुंडा मर गए, विष के इतने भारी प्रभाव था, इतने पॉइजन से पेट था। मछली बचेंगे, मछली के पूरे गांव के गांव झुंड के झुंड सारे मर करके, वो हो ही नहीं सकते मछली, मछली केंचुआ उनके चक्कर में जितने जलचर प्राणी साफ क्लीन हो गए, कोई ना रहा, भयानक विष रहा उनके रहने का गांव, कालिया के हेडक्वार्टर बना। ये है वैष्णव अपराध के प्रभाव, एक बार गरुड़ जी के चरण में किए तो ये उसका इफेक्ट है। तो इस प्रकार जब हम उनको समझ ना करके केवल अपने भोग के प्राण होकर के इस प्रकार सुंदर चीज के ऊपर फंसेंगे तो ये प्रभाव होता है, कोई अपने बल बुत्ते शक्ति जोग कोई काम ना करे, सब रहिक रह जाए, कुछ काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये बुद्धि जब भोग उन्मुखी होता है, जब भोग के लिए आकृष्ट होता है, तब हम बिल्कुल सतर्क सजाग हो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए क्या हो रहा है, उसी समय सावधान होकर के थोड़ा विचार करना चाहिए और उसको सिमट लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कैसे सिमटना चाहिए, कछुआ कछुआ उदाहरण देना, कच्छप क्या श्लोक है, जब दा संघरते चायम, ऐसे बोलते ना, कर्मंगानि वसर्वसः, कछुआ अब चलता है, अपना हाथ निकलता है, चार दो चार निकलता है, मुंह निकलता है, सब चलता है, खत्म, जैसे देखता है कुछ ऑब्जेक्ट आया, ऐसे इमीडिएट एक सेकंड में सारे अंदर ड्रा कर लेता है, कुछ भी नहीं, जैसे टोकरी है, उठाओ फेंको मारो कुछ नहीं निकलेगा, ऐसे सिमट लेता है। इसी प्रकार इंद्रिय जो भोग उनमें को था, ऐसे सिमट लो, कुर्म अंगानि वसर्वस, कुर्म अंगानि इव, कुर्म के अंग जैसे कुर्म संभाल लेता है, ऐसे कछुआ की तरह संभाल लो, नहीं तो रेड लाइट अलर्ट खबरदार, पता भी नहीं चलेगा कहाँ किस प्रकार किसी धरातल पर फंस गया, मर गया, कहाँ उतरा जाकर पता ही नहीं चलेगा, कितने द्रुत गति में पतन हो जाता है, माया इतने पावरफुल है। तो इस माया से बचने के लिए केवल इंद्रियों को खींचने से कुर्म की तरह तब भी कामना चले तो फिर क्या करना चाहिए, तो भगवान उपाय बताते हैं, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, कोई उपाय नहीं, तेरे बलबुत कुत्ते को साइड में रखो, मेरे शरण में आ जाओ। हरी शरणम, हरी शरणम, हरी शरणम, हरी के शरण में चले जाओ। एक बार उनके शरण में गया तो उन्हीं की माया है ना, वो आकर सुनेगा, पूछ ही लाएगा, है ठीक है, अपना बस के आदमी है, मालिक के आदमी है, ठीक है जी, कुछ नहीं, छोड़ देगा, तर जाएंगे माया से, नहीं तो फसना भाई। तो इसी प्रकार महाराज पुरंजन किस प्रकार फंस रहे हैं, भगवन्मुखी हो रहे हैं, बुद्धि किस प्रकार काम कर रहा है, उसके बड़े अविकल चित्रण नारद जी ने इस उपाख्यान में कर रहे हैं। आगे आगे आप उसको और पढ़ेंगे और समझेंगे। हरे कृष्ण। कोई किसी का प्रश्न है? हाँ जी।
मछलियाँ जाके
तो उनका अपराध नहीं हुआ, सोहरी मुनि उनको फेवर किए ना, जिनके बचाव के लिए गरुड़ जी को साप दिए वो भी गए, उन्हीं के वजह से गरुड़ जी को साप दिए ना, नहीं तो गरुड़ जी से झगड़ा क्यों करते हो, उनके क्या पड़ा था, उन्हीं के चलते किए। जिनकी कृपा कर रहे थे उनका कृपा का कोई मूल्य नहीं रहा, सारे मर करके गए, जिंदगी की इतनी पीढ़ी तक सारे मर गए सारे, और उन्हीं के चलते सारे एक्वाटिक्स खत्म हो गए, ये जगह में कोई जलचर प्राणी रह नहीं सके। यही बोलते हैं, कोई अपराधी किसी को कृपा भी करेगा, कृपा भी उसले से हो जाता है ना। हाँ हाँ, इसलिए वर्णन किया गया है कि हमको सिखाने के लिए, सतर्क करने के लिए, हम जब भोग करने जाते हैं ना, किस प्रकार के स्टेप स्टेप हम जाते हैं, क्या करते हैं, इसको अविकल चित्र नारद जी दिखाया कि बेटा फंस जाता है, सीखो वही स्टेप में संभाल लो अपने आप को, कम से कम अभी देख करके संभाल लो, और थोड़ा पास में जाकर संभाल लो। ये इसलिए हर एक एक श्लोक इतने डिटेल, इतने विश्लेषणात्मक देते हैं कि हमको शिक्षा देने के लिए किसी भी स्टेप में बचा लो अपने आप को, नहीं तो बुरी तरह से डाउन हो जा रहा है ना। इतने डिटेल विश्लेषण इसलिए हमको शिक्षा देने के लिए कि हम किसी भी स्टेप में संभाल ले अपने, है ना। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की संवेद भक्तवृंद की जय।